इस कहानी का गौण उद्देश्य यह है कि परमेश्वर एक असंभाव्य विजेता उभारता है जो उसी प्रजा को बैरी से बचाने के लिए यश्य के वंश से है। इस कहानी की तीन शिक्षाएं। इसका कष्टों से क्या संबंध? हमें परमेश्वर की महिमा के प्रति मनोवेग से पूर्ण होना है। इस कहानी की शिक्षा यह नहीं है कि दानवों के सामने निडर रहें, परंतु यह कि हमारी हर एक समस्या में परमेश्वर की महिमा के प्रति मनोवेग से वंचित ना हों। हर एक समस्या के निवारण से बढ़कर परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाने की लालसा रखें, चाहे समस्या का समाधान ना हो। अतः हमारा उद्देश्य हमारी सुरक्षा, सुविधा और योजना पूर्ति की अपेक्षा परमेश्वर का महिमान मन हो। हमारी समस्याओं में हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करे। परमेश्वर के सामर्थ्य में विश्वास रखें। युद्ध तो वास्तव में जीता जा चुका है, प्रभु ने ये युद्ध क्रूस पर जीत लिया है। कुलुसियों 2:13-15 कहता है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। शैतान हराया जा चुका है। अतः पाप और कष्टों में हम युद्ध नहीं करते हैं, हम तो विजय के आधार पर लड़ते हैं। यही तो एक महान अंतर है। 1 यूहन्ना 4:4 कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। यदि यह तथ्य आपके चित्त में नहीं उतरा है तो आपको विजय का अनुभव नहीं होगा। आप हारे हुए और उलझन में पड़े हुए होंगे। हम विश्वासी विजयी हैं। हम अपनी विजय को आगे बढ़ा रहे हैं। यूहन्ना कहता है कि जो हमें अंतर्वास करता है वह संसार के सरदार से महान है। यह हमें 1 यूहन्ना 4:4 में मिलता है। अतः हमारे प्रत्येक पाप एवं परीक्षा और संघर्ष में हम प्रभु यीशु को निहारें। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। शमूएल, राजा, इतिहास, पाप और कष्ट। इसराइल के राजाओं में गंभीर पाप। मैं 1 और 2 शमूएल, 1 दूसरा राजा, 1 दूसरा इतिहास को पाप और कष्ट के शीर्षक के अधीन रखना चाहता हूँ। इसराइल के राजाओं में गंभीर पाप आ गया था। दुर्भाग्य से दाऊद का बतशेबा के साथ व्यभिचार और उसके पति उरिया की हत्या। 2 शमूएल 11:2-5। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने दूत भेजकर उस स्त्री को पुछवाया तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। पाप परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। 2 शमूएल 11:26-27। जब उरिया की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया तब वह अपने पति के लिए रोने पीटने लगी और जब उसके विलाप के दिन बीत गए तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया और वह उसकी पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था यहोवा क्रोधित हुआ। देखिए, पाप कैसे चतुराई से आता है और महान हानि पहुंचाता है, वरन पूर्ण नियंत्रण कर लेता है और कष्टदायी विनाश लाता है। परमेश्वर के मन के अनुसार राजा दाऊद में पाप कैसे आया? पाप की त्रासदी परमेश्वर को चुनौती है। भजन 51:3-5 में दाऊद कहता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पाप परमेश्वर को चुनौती और मनुष्य की कुंठा है। इसराइल के इतिहास में पाप का राजा था। इसराइल की प्रजा में कष्टों की गाथा। दाऊद, सुलेमान और उसके बाद के हर एक राजा के युग में इसराइल के कष्टों की गाथा पढ़ें। 1 राजा 11:4-8। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के नहीं अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगाना रहा। सुलेमान तो सीदोनियों की अश्तोरेत नामक देवी और अम्मोनियों के मिलकोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलम के सामने के पहाड़ पर मुआबियों के कमोश नामक घृणित देवता के लिए और अम्मोनियों के मोलेक नामक घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया और अपनी सब विजातीय स्त्रियों के लिए भी जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थीं उसने ऐसा ही किया। यहाँ वाचा के क्रमिक इतिहास को देखें। पहला राजा 1 से 11 में शाऊल, दाऊद और सुलेमान का राज्य। सुलेमान के बाद इसराइल का विभाजन हो गया था। उत्तरी राज्य इसराइल और दक्षिणी राज्य यहूदा और अंततः उत्तरी राज्य मिट गया और दक्षिणी राज्य कुछ समय बाद बंधुआई में चला गया। वाचा के प्रति उनके निष्ठा को देखें। इसराइल के 19 में से एक राजा ने भी वाचा का मान नहीं रखा और यहूदा के 20 राजाओं में से केवल 8 ही परमेश्वर के मार्गों में चले। परमेश्वर से विद्रोह के कारण उनकी प्रजा को कष्ट भोगना पड़ा। ये वाचा का अनर्थ था। विभाजन, नरसंहार, अशूरियों द्वारा उत्तरी राज्य का ध्वंस किया जाना और अंत में बेबीलोन राज्य द्वारा यरूशलम का विनाश। पाप चतुराई से आता है, गहरी चोट पहुंचाता है, शीघ्र पकड़ करता है और कष्टदायक विनाश लाता है। पाप सदा ही कष्ट लाता है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम देख पाएं कि पाप सदैव कष्ट लाता है। एज़रा, नहेमिया, एस्तर। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। कथा वस्तु, परमेश्वर दयावान है। एज़रा, नहेमिया, एस्तर। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। इन पुस्तकों में परमेश्वर द्वारा उसके लोगों की रक्षा और बंधुआई के बाद यरूशलम में पुनर्वास का वृत्तांत है। एज़रा 1:1-4 में लिखा है, फारस के राजा कुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुसरू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यर्मिया के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया, फारस का राजा कुसरू यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलम में मेरा एक भवन बनवा। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे और वह यहूदा के यरूशलम को जाकर इसराइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। जो यरूशलम में है वही परमेश्वर है। जो कोई किसी स्थान में रह गया हो जहां वह रहता हो उस स्थान के मनुष्य चांदी, सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करें और इससे अधिक परमेश्वर के यरूशलम के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भी भेंट चढ़ाएं। यहूदियों का यरूशलम लौटना, एज़रा 2:1, जिनको बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर बेबीलोन को बंदी बनाकर ले गया था उनमें से प्रांत के जो लोग बंधुआई से छूटकर यरूशलम और यहूदा को अपने अपने नगर में लौटे वे ये हैं। लौटने के बाद मंदिर का पुनः निर्माण, एज़रा 6:14-16, तब यहूदी पुरनिये हगई नबी और इद्दो के पोते जकरिया के नबुवत करने से मंदिर को बनाते रहे और सफल भी हुए। उन्होंने इसराइल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फारस के राजा कुसरू, दारा और अत्रशत्र की आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर लिया। इस प्रकार वह भवन राजा दारा के राज्य के 6वें वर्ष में अदार महीने के 3रे दिन को बनकर समाप्त हुआ। इसराइली अर्थात याजक, लेवीय और अन्य जितने बंधुआई से आए थे उन्होंने परमेश्वर के उस भवन की प्रतिष्ठा उत्सव के साथ की। तदोपरांत शहरपनाह का पुनः निर्माण, यह नहेमिया का वृत्तांत है। 6:15-16, एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। उद्देश्य, इन वृत्तांतों का उद्देश्य है कि हम देखें परमेश्वर अंततः अपने लोगों को अपनी महिमा के निमित्त सुरक्षित रखता है। निम्न संदर्भों में आप देखेंगे कि परमेश्वर अन्य जाति राजाओं के द्वारा अपने लोगों की रक्षा करता है। 2 इतिहास 36:15-23, उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय ना रहा। तब उसने उन पर कस्तियों के राजा से चढ़ाई करवाई और इसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। और क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़े, क्या पके बाल वाले, किसी पर भी कोमलता ना की। यहोवा ने सबों को उसके हाथ में कर दिया। क्या छोटे क्या बड़े, परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को वह बेबीलोन में ले गया। कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। जो तलवार से बच गए उन्हें वह बेबीलोन को ले गया और फारस के राज्य के प्रबल होने तक वे उसके और उसके बेटों पोतों के अधीन रहे। यह सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यर्मिया के मुंह से निकला था वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सूना पड़ा रहा तब तक अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। फारस के राजा कुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उभारा कि जो वचन यर्मिया के मुंह से निकला था वह पूरा हो। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और इस आशय की चिट्ठियां लिखवाईं। फारस का राजा कुसरू कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा। इसलिए हे उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके लिए साथ रहे तो वह वहां रवाना हो जाए। नहमिया 2:8 और सरकारी जंगल के रखवाले आसाब के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए ताकि वे मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपना के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। नहमिया 2:18 फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थीं। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगें, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। नहमिया 2:20 तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे, परंतु यरूशलम में तुम्हारा ना तो कोई भाग ना हक ना स्मारक है। नहमिया 4:15 जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की है, तब हम सब के सब शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट गए। नहमिया 4:19-20 इसलिए मैंने रईसों हाकिमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम लोग शहरपनाह पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं, इसलिए जिधर से नरसिंघा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना, हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। नहमिया 6:15-16 एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। नहमिया 7:5 तब मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में यह उपजाया कि रईसों हाकिमों और प्रजा के लोगों को इसलिए इकट्ठा करूं कि वे अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने जाएं, और मुझे पहले पहल यरूशलम को आए हुओं का वंशावली पत्र मिला और उस पर मैंने यूं लिखा हुआ पाया, एस्तर की पुस्तक में परमेश्वर नाम कहीं नहीं है। इसका अर्थ है कि जब हम परमेश्वर को देख भी ना पाएं वह सदा उपस्थित रहता है और सक्रिय रहता है। एस्तर 3:8-11 तब हमान ने राजा शेर्ष से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न हैं, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए, और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किक्कार चांदी दूंगा। तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतार कर अगागी हमददाता के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी, और राजा ने हामान से कहा, वह चांदी तुझे दी गई है और वे लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। हामान परमेश्वर के लोगों के सर्वनाश का षड्यंत्र रचता है, परंतु परमेश्वर ने एस्तर को पहले ही से रानी बना दिया था। यह परमेश्वर की प्रभुता है। एस्तर 4:12-16 एस्तर की ये बातें मोर्दकई को सुनाई गईं। तब मोर्दकई ने एस्तर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण सब यहूदियों में से बचे रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तर ने मोर्दकई के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन व रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। एस्तर की पुस्तक में परमेश्वर के लोग सर्वनाश के संकट में, और वहां परमेश्वर का नाम कहीं नहीं है, परंतु स्पष्ट है कि एस्तर रानी बनना परमेश्वर की योजना में था कि परमेश्वर के लोग बचाए जाएं। एज़रा, नहेमिया और एस्तर की पुस्तकों के अंत में स्पष्ट है कि हमारे कष्टों के समय वरन सदा ही परमेश्वर सामर्थी है। एस्तर 9:20-22। इन बातों का वृत्तांत लिखकर मर्दकय ने राजा शेयर्स के सब प्रांतों में क्या निकट क्या दूर रहने वाले सारे यहूदियों के पास चिट्ठियां भेजीं और यह आज्ञा दी कि अदार महीने के 14वें और उसी महीने के 15वें दिन को प्रति वर्ष माना करें, जिनमें यहूदियों ने अपने शत्रुओं से विश्राम पाया, और यह महीना जिसमें शोक आनंद से और विलाप खुशी से बदला गया माना करें, और उनको जेवनार और आनंद और एक दूसरे के पास भोजन सामग्री भेजने और कंगालों को दान देने के लिए माने। मेरा सर्वप्रिय बाइबल अंश नहेमिया 12 है। शहरपनाह के पुनः निर्माण के समय पड़ोसी अन्य जाति यहूदियों का ठट्टा कर रहे थे कि वह तो बिल्ली के चढ़ने से ही गिर जाएगी, परंतु नहेमिया 12 में सब यहूदी उस दीवार पर चढ़कर गाते बजाते चल रहे थे। परमेश्वर कष्टों में अपना सामर्थ्य प्रकट करता है। नहेमिया 12:43। उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए और आनंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। स्त्रियों ने और बाल बच्चों ने भी आनंद किया। यरूशलेम की आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। भजन एवं नीति शास्त्र, अयूब 1-2। कष्टों में परमेश्वर की प्रभुता। अयूब के कष्ट। कष्टों पर एक सिद्ध वृत्तांत अयूब का है। मैं अयूब की पुस्तक को 4 भागों में विभाजित करके दर्शाना चाहता हूँ, कष्टों में परमेश्वर की प्रभुता, कष्टों में परमेश्वर का प्राचुर्य, कष्टों में परमेश्वर का उद्देश्य, कष्टों में परमेश्वर का सामर्थ्य। हम एक एक करके इसे देखेंगे। पहले तो हम परमेश्वर की प्रभुता को देखेंगे। अयूब को एक खरा मनुष्य कहा गया है। शैतान परमेश्वर से कहता है कि उसके पास सब कुछ है, इसलिए वह परमेश्वर की उपासना करता है। परमेश्वर शैतान को अनुमति देता है और अयूब की संपदा शत्रुओं द्वारा लूट ली जाती है। उसके बच्चे प्राकृतिक आपदा में मर जाते हैं। अयूब कहता है, अयूब 1:20-22। तब अयूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दणवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अयूब ने ना तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। यहाँ हम देखते हैं कि कष्ट अनर्जित है। अयूब 1:1। ऊंच देश में अयूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। और अयूब 1:8। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अयूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। परंतु हमने बार बार यही देखा है कि पुराने नियम में कष्ट प्रायः अर्जित है, पाप का परिणाम है, परंतु अयूब के परिदृश्य में ऐसा नहीं है। यहाँ जीवन के कष्ट अकारण हैं। अयूब की पुस्तक का आंशिक उद्देश्य यह भी है कि कष्ट आवश्यक नहीं हमारे चरित्र का परिणाम हो। प्रभु यीशु को छोड़ अन्य कोई सिद्ध नहीं है। अयूब को 4 विशेषणों से संबोधित किया गया है, निर्दोष, खरा, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला। लेखक के लिखने का उद्देश्य है कि अयूब को पाप रहित नहीं परंतु पाप से दूर रहने वाला दर्शाए। कष्ट प्रायः अनुवेक्षित होते हैं। अयूब सुबह जागा तो वह कष्टों की अपेक्षा में नहीं था। अयूब 1:13-17। एक दिन अयूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अयूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चर रही थीं, कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कस्ती लोग 3 गोल बांधकर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। कष्टों की हम आशा नहीं करते, कल्पना नहीं करते। अय्यूब अध्याय एक में आप यही देखते हैं। अय्यूब 1:18-19, वह भी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाखमधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। अध्याय 2 में शैतान फिर परमेश्वर को दोष देता है कि वह उसके शरीर की रक्षा करता है, इसलिए अय्यूब परमेश्वर का भक्त है। अय्यूब 2:7-8, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा। अय्यूब के शरीर पर फोड़े, चेहरे की चमड़ी का गिरना, भूख का मरना, निराशा, दुर्बलता, घावों में कीड़े, घावों में मवाद बहना, सांस लेने में कठिनाई, आंखों के नीचे काले दाग, श्वास की दुर्गंध, वजन घटना, पीड़ा, अशांति, त्वचा का सूखापन और बुखार। अय्यूब कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि उसके साथ ऐसा होगा। कष्ट कल्पना से परे होते हैं, कष्ट पीड़ादायक होते हैं। बाइबल कष्टों की पीड़ा को छिपाती नहीं है। अय्यूब 2:12 देखिए, जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे ना पहचान सके, तब चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। अय्यूब 3:24-25, मुझे खाने के लिए रोटी के बदले लंबी लंबी सांसें आती हैं और मेरा विलाप धारा के समान बहता रहता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। अय्यूब 7:5, मेरी देह कीड़ों और मिट्टी के ढेलों से ढकी हुई है, मेरा चमड़ा सिमट जाता और फिर गल जाता है। अय्यूब 9:18, वह मुझे सांस भी नहीं लेने देता है और मुझे कड़वाहट से भरता है। अय्यूब 16:16, रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है और मेरी आंखों पर घोर अंधकार छा गया है। अय्यूब 19:17-20, मेरी सांस मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है, लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं और जब मैं उठने लगता तब वे मेरे विरुद्ध बोलते हैं। मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं और जिनसे मैंने प्रेम किया वे पलटकर मेरे विरोधी हो गए हैं। मेरी खाल और मांस मेरे हड्डियों से सट गए हैं और मैं बाल बाल बच गया हूँ। अय्यूब 30:17, रात को मेरी हड्डियाँ मेरे अंदर छिद जाती हैं और मेरी नसों में चैन नहीं पड़ता। अय्यूब 30:27-31, मेरी अंतड़ियाँ निरंतर उबलती रहती हैं और आराम नहीं पाती, मेरे दुख के दिन आ गए हैं, मैं शोक का पहरावा पहने हुए मानो बिना सूर्य की गर्मी के काला हो गया हूँ। मैं सभा में खड़ा होकर सहायता के लिए दुहाई देता हूँ, मैं गीदड़ों का भाई और शुतुरमुर्गों का संगी हो गया हूँ, मेरा चमड़ा काला होकर मुझ पर से गिरता जाता है और ताप के मारे मेरी हड्डियाँ जल गई हैं। इस कारण मेरी वीणा से विलाप और मेरी बांसुरी से रोने की ध्वनि निकलती है। कष्टों की पीड़ा वास्तविक है। मैं नहीं कहता कि परमेश्वर को जानने से कष्ट, दुख और विषाद आसान हो जाते हैं। परमेश्वर की प्रभुता। अय्यूब के कष्टों में मैं परमेश्वर की प्रभुता दर्शाना चाहता हूँ कि अध्याय 1-2 में परमेश्वर सब बातों पर प्रभुता करता है। अय्यूब 1:6-12, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। परमेश्वर स्वर्गदूतों पर प्रभुता करता है। परमेश्वर दुष्ट आत्माओं शैतान पर प्रभुता करता है। हमने उत्पत्ति 3 में यह देखा है, शैतान की शक्ति परमेश्वर की इच्छा से सीमित हो जाती है। परमेश्वर की अनुमति के बिना शैतान कुछ नहीं कर सकता, परंतु अनुमति पाते ही वह अय्यूब पर विनाश ढा देता है। अय्यूब पर कष्ट कौन लाया? अंततः यह परमेश्वर की ओर से था। यूसुफ की कहानी में भी हमने देखा था कि परमेश्वर के हाथ में नियंत्रण है। शैतान परमेश्वर की प्रभुता के बाहर स्वयं कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, शैतान नहीं। शैतान की लगाम परमेश्वर के हाथ में रहती है। परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, परम प्रधान है, शैतान नहीं। परमेश्वर सब जातियों पर प्रभुता करता है। वह शबा और कसदियों पर जो अय्यूब की संपदा लूटते हैं उन पर भी प्रभुता करता है। अय्यूब 12:23, वह जातियों को बढ़ाता और उनको नष्ट करता है, वह उनको फैलाता और बंधुआई में ले जाता है। अय्यूब 37:6-13, वह तो हिम से कहता है पृथ्वी पर गिर, और इसी प्रकार मेह को भी और मूसलाधार वर्षा को भी ऐसी ही आज्ञा देता है। वह सब मनुष्यों के हाथ पर मुहर कर देता है जिससे उसके बनाए हुए सब मनुष्य उसको पहचाने। तब वन पशु गुफाओं में घुस जाते और अपनी अपनी मांदों में रहते हैं। दक्षिण दिशा से बवंडर और उत्तर दिशा से जाड़ा आता है। परमेश्वर की श्वास की भूख से बर्फ पड़ती है, तब जलाशयों का पाट जम जाता है। फिर वह घटाओं को भाप से लादता और अपनी बिजली से भरे हुए उजियाले का बादल दूर तक फैलाता है। वे उसकी बुद्धि की युक्ति से इधर उधर फिराए जाते हैं, इसलिए कि जो आज्ञा वह उनको दे उसी को वे बसाई हुई पृथ्वी के ऊपर पूरी करें, चाहे ताड़ना देने के लिए, चाहे अपनी पृथ्वी की भलाई के लिए, या मनुष्यों पर करुणा करने के लिए वह उसे भेजे। वह आकाश से गिरने वाली आग, रेगिस्तान से उठने वाली आंधी पर भी प्रभुता करता है। परमेश्वर रोगों पर भी प्रभुता करता है। अय्यूब को रोगग्रस्त करने वाला परमेश्वर था। परमेश्वर मृत्यु पर भी प्रभुता करता है कि उसे असाध्य रोग से मुक्त करके पुनः स्वास्थ्य प्रदान करे। अय्यूब 4:15 में लिखा है, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। परमेश्वर मृत्यु पर प्रभुता करता है, शैतान नहीं। परमेश्वर सुख सुविधा पर प्रभुता करता है। अय्यूब को परमेश्वर ने ही आशीषें दी थी। परमेश्वर विदाओं पर भी प्रभुता करता है। अय्यूब 2:9-10, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। परमेश्वर अय्यूब की आशीषों ही पर नहीं, उसके कष्टों पर भी प्रभुता करता है। आप यह न सोचें कि परमेश्वर ने अय्यूब को आशीषें दी और शैतान ने उसे कष्ट दिया। शैतान के हाथ में कुछ नहीं है। परमेश्वर सब बातों पर प्रभुता करता है। हमारे कष्टों में परमेश्वर की प्रभुता। हमारे कष्टों में परमेश्वर की प्रभुता के संबंध में आप इस पुस्तक के आरंभ में 3 बातें देखते हैं। पहली, इस पृथ्वी पर हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना है, कष्ट वहन। परमेश्वर कष्ट देता नहीं है, कष्ट परमेश्वर की योजना का एक भाग है। अय्यूब के कष्ट शैतान नहीं, परमेश्वर की ओर से थे। परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि उसने पृथ्वी पर परमेश्वर के भक्त अय्यूब को देखा। अय्यूब जानता था कि विपत्ति परमेश्वर की योजना में है। उसने कहा, 1:21, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। कौन ले सकता है? शैतान नहीं, केवल परमेश्वर। दूसरी बात, परमेश्वर की प्रभुता ही कष्टों में स्तुति का आधार है। जैसा हमने यूसुफ की कहानी में देखा था, 1:20 में अय्यूब यही कहता है, बुरा समाचार सुनकर अय्यूब ने परमेश्वर को दंडवत किया। यह कैसे संभव है? अत्यधिक कठिन है। अय्यूब कहता है, मैं अपनी माँ के गर्भ से नंगा आया था और नंगा ही चला जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर ने ले लिया। परमेश्वर का नाम धन्य हो। अय्यूब ने स्तुति के योग्य केवल परमेश्वर ही को प्रभु देखा था। परमेश्वर की प्रभुता स्तुति का आधार कैसे है? आप कहेंगे, परमेश्वर प्रभुताधारी है तो मुझे कैंसर क्यों है? मैं मर जाऊंगा तो परमेश्वर की प्रभुता किस काम की? परमेश्वर की प्रभुता हमें विश्वास दिलाती है कि वह नियंत्रण रखता है। यदि हम यह सोचते हैं कि हमारे कष्टों में शैतान का नियंत्रण है तो हमें शांति नहीं मिलेगी। परंतु मनुष्य प्राय शैतान को ही नियंत्रण में मानता है। क्या यह सोचकर आपको शांति मिलती है? मित्रों, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वही सब बातों को नियंत्रण में रखता है। तो हमारे कष्टों में प्रतिपल हमारे साथ है। अय्यूब इस तथ्य से परिचित था, मुख्य बात यही है। अय्यूब ने कहा, परमेश्वर ने दिया, यह परमेश्वर की विश्वास योग्यता की वाचा का नाम है। परमेश्वर 99.9% नहीं, पूरा 100% आपके साथ है और आपके लिए है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वैभवशाली सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु आपके साथ 100% है। अब परमेश्वर की प्रभुता स्तुति योग्य क्यों है? परमेश्वर नियंत्रण करता है, शैतान पराजित किया गया है। अय्यूब की पुस्तक का एक उद्देश्य यह भी है कि शैतान का अपमान हो, उसकी अशक्ति प्रकट हो। अध्याय 2 के बाद शैतान शांत है। परमेश्वर की प्रभुता हमें विश्वास दिलाती है कि एक दिन हमारे कष्टों का अंत होगा। तीसरी बात, हमारे कष्ट स्वर्ग के ईश्वरीय दृष्टिकोण से उचित रूप में समझे जा सकते हैं। यह पुस्तक परमेश्वर की प्रभुता के भेद खोजती है। इस पुस्तक में हम जो देख रहे हैं वह अय्यूब नहीं देख रहा था। उसने स्वर्ग में परमेश्वर और शैतान का वार्तालाप नहीं सुना था, वह तो केवल अंधकार में ही समझने का प्रयास कर रहा था। हम जानते हैं कि अय्यूब का पुनरुद्धार होगा, परंतु अय्यूब तो एक एक चरण भविष्य की ओर बढ़ रहा था। इस पृथ्वी के भेद स्वर्ग की बातों पर निर्भर करते हैं। स्वर्ग में 10,000 स्वर्गदूत शैतान की और परमेश्वर की बातें सुनते हैं। परमेश्वर उससे कहता है कि वह अपना प्रयास करके अय्यूब के विश्वास को तोड़ ले। शैतान अय्यूब का सब कुछ नष्ट कर देता है, परंतु अय्यूब कहता है, परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ही ले लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। स्वर्ग में 20,000 हाथ ऊपर उठते हैं और 10,000 आवाजें पुकार उठती हैं, अय्यूब का परमेश्वर योग्य है। अय्यूब को कुछ नहीं पता कि स्वर्ग में क्या हो रहा है। यहाँ हम सब के लिए एक प्रश्न है, क्या हम पृथ्वी पर रहस्यों से घिरे परमेश्वर की स्तुति करेंगे? क्या हम परमेश्वर के स्वर्गिक परिदृश्य में उस पर भरोसा रखेंगे? अय्यूब 3:31, कष्टों में परमेश्वर का प्राचुर्य। चौथा तथ्य, कष्टों में परमेश्वर का प्राचुर्य। अय्यूब 3:31, कष्ट अनंत प्रतीत हो तो आप क्या करेंगे? अध्याय 2 में विजय हुई, परंतु अंत नहीं हुआ। अय्यूब कूड़े के ढेर पर बैठा हुआ है, उसके घावों से मवाद बह रहा है। परमेश्वर का प्राचुर्य कष्टों में ही नहीं, कष्टों के अंत न होने में भी है। अय्यूब के 3 मित्र उससे विवाद करते हैं। मैं यहाँ 4 सत्यों पर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ। अय्यूब 3:1-11, इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्मदिन को धिक्कारने और कहने लगा, वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वह रात भी जिसमें कहा गया बेटे का गर्व रहा। वह दिन अंधियारा हो जाए, ऊपर से ईश्वर उसकी सुधि ना ले और न उसमें प्रकाश होए, अंधकार और मृत्यु की छाया उस पर रहे, बादल उस पर छाए रहें और दिन को अंधेरा कर देने वाली चीजें उसे डराएं, घोर अंधकार उस रात को पकड़े, वर्ष के दिनों के बीच वह आनंद ना करने पाए और ना महीनों में उसकी गिनती की जाए। सुनो, वह रात बांझ हो जाए, उसमें गाने का शब्द ना सुन पड़े। जो लोग किसी दिन को धिक्कारते हैं और लिब्यातान को छेड़ने में निपुण हैं उसे धिक्कारें, उसकी संध्या के तारे प्रकाश ना दें, वह उजियाले की बाट जो है पर उसे ना मिले, वह भोर की पलकों को भी देखने ना पाए, क्योंकि उसने मेरी माता की कोख को बंद ना किया और कष्ट को मेरी दृष्टि से ना छिपाया। मैं गर्भ ही में क्यों ना मर गया, पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों ना छूटा? जब कष्टों का अंत ना दिखाई दे, परमेश्वर आपके साथ है, यह मुख्य बात है। अय्यूब 3:23, उजियाला उस पुरुष को क्यों मिलता है जिसका मार्ग छिपा है, जिसके चारों ओर ईश्वर ने घेरा बांध लिया है? परमेश्वर अनेक रूप में कहता है, मैं तेरे साथ हूँ। हम परमेश्वर से पूछते हैं, क्या यह अनुचित नहीं है? परंतु परमेश्वर हमें उत्तर देने की अपेक्षा प्रकाशन देता है, हमें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अय्यूब अध्याय 42 में यही दिखाया गया है। अय्यूब 42:4-6, तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आँखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूलि और राख में पश्चाताप करता हूँ। आप कहेंगे मेरी आवश्यकता उत्तर पाना है, और आप कहते हैं परमेश्वर अपनी उपस्थिति का प्रकाशन करता है। मेरा हाथ टूट गया था, मुझे आवश्यकता दर्द निवारक औषधि की थी, न कि डॉक्टर की व्याख्या की कि हड्डी कैसे टूटती है। मेरी पत्नी को परेशानी होती है तो उसे मेरी उपस्थिति की आवश्यकता होती है, न कि मेरी व्याख्याओं की। हमें आयुर्विज्ञान पढ़ने वाले परमेश्वर की नहीं, एक सदा सहाय परमेश्वर की आवश्यकता होती है। परमेश्वर हमें अपनी सदाकालीन उपस्थिति प्रदान करता है। हमारी आशीषें चली जाएं तो भी परमेश्वर हमारे साथ है। अय्यूब 5:18, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। अध्याय एक में शैतान ने परमेश्वर से कहा था कि वह अय्यूब को आशीषों से वंचित कर दे तो वह उसे कोसेगा, परंतु अय्यूब ने परमेश्वर को नहीं कोसा। आगे के अध्यायों में उसके मित्र आकर कहते हैं कि उसके कष्टों का कारण उसके पाप हैं, क्योंकि उनका मानना था कि धर्मी जन को आशीषें और दुष्ट को कष्ट मिलते हैं, अतः अय्यूब के कष्ट पाप का परिणाम है। उसे पापों की क्षमा मांगने की आवश्यकता है। अय्यूब अध्याय 3-31 में उनका वाद विवाद चलता है। कुछ बातें तो उन्होंने बहुत अच्छी की हैं, परंतु थियोलॉजी में तोड़ मरोड़ करने से जैसा अनर्थ होता है, यह इसका एक अच्छा उदाहरण है। अय्यूब के मित्रों की मान्यता आज भी प्रचलित है। मित्रों, कष्टों को परमेश्वर की अप्रसन्नता मानना सुसमाचार नहीं है। पाप का परिणाम कष्ट अवश्य है, परंतु कष्टों को पाप का परिणाम मानना विकृत थियोलॉजी है। समृद्ध मसीह विश्वास का मानना यही है कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करें तो आप समृद्ध होंगे। आपके विश्वास में कमी आने पर परमेश्वर रुष्ट होगा। एक स्त्री ने मुझसे कहा कि वह टीवी पर प्रचार सुनती है कि परमेश्वर पर विश्वास रखने से आशीषें मिलती हैं, परंतु वह अथाह विश्वास करके भी गरीब है। मुझे ऐसे प्रचारकों पर क्रोध आया। यह सच नहीं है। सच्चा सुसमाचार कष्टों को परमेश्वर की निकटता में लाने का साधन कहता है। अय्यूब हमें यही सिखाता है। वह शैतान को और अपने मित्रों को कंगाली में भी विश्वास के संघर्ष का प्रदर्शन दिखाता है। कुछ नहीं हो तो परमेश्वर को और अधिक गहराई से खोजें। आशीषों से निरपेक्ष परमेश्वर की खोज करें। इस पर व्यवहारिक विचार करें। कष्ट वहन क्या है? सांसारिक समृद्धि से वंचित होना, जैसे पद प्रतिष्ठा, सफलता, मान सम्मान, नौकरी, पैसा, मित्र, स्वास्थ्य, आँखें, सुनना, पति पत्नी, बच्चे, परिवार आदि, इन सब को हम सुरक्षा मानते हैं और वंचित होने पर कष्ट उठाते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो हमारी सुरक्षा और स्थिरता परमेश्वर है। सांसारिक आशीषों की कमी हमें परमेश्वर के अधिक अधिक निकट लाती है। एक आशीष कम हुई तो हमारी परमेश्वर पर निर्भरता का एक अंश पड़ा। कुछ खोना या किसी को खोना आसान नहीं है। आंसू बहते हैं, परंतु हम परमेश्वर पर अधिक अधिक आश्रित होने लगते हैं। परमेश्वर कहता है, कुछ भी चला जाए तो अब भी अच्छा ही है। तेरी नौकरी, तेरा घर, पैसा आदि चली जाए या बच्चे तुझे ना हो, पति ना मिले, पत्नी ना मिले, तेरा प्रिय जन मर जाए तो भी तू अच्छा ही है। तीसरा तथ्य, हमारी परिस्थितियों की उलझन में परमेश्वर सर्वबुद्धिमान है। अय्यूब की पुस्तक नीति शास्त्र का भाग है और इसमें मनुष्य की सीमित बुद्धि तथा परमेश्वर की असीमित बुद्धि की तुलना दर्शाई गई है। अय्यूब 28:12-28, परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? उसका मूल मनुष्य को मालूम नहीं। जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती। अतः सागर कहता है, वह मुझमें नहीं है। समुद्र भी कहता है, वह मेरे पास नहीं है। चोखे सोने से वह मोल लिया नहीं जाता और ना उसके दाम के लिए चांदी तौली जाती है। ना तो उसके साथ ओपीर के कुंदन की बराबरी हो सकती है और ना अनमोल सुलेमानी पत्थर या नीलमणि की। ना सोना ना कांच उसके बराबर ठहर सकता है। कुंदन के गहने के बदले भी वह नहीं मिलती। मूंगे और स्फटिक मणि की उसके आगे क्या चर्चा। बुद्धि का मोल मणिक से भी अधिक है। कूश देश के पद्मराग उसके तुल्य नहीं ठहर सकते और ना उसे चोखे कुंदन की बराबरी हो सकती है। फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? वह सब प्राणियों की आंखों से छिपी और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आती। विनाश और मृत्यु कहती है, हमने उसकी चर्चा सुनी है, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान उसको मालूम है। वह तो पृथ्वी की छोर तक ताकता रहता है और सारे आकाश मंडल के तले देखता भालता है। जब उसने वायु का तौल ठहराया और जल को नपुए में नापा और मेह के लिए विधि और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग ठहराया, तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद जान लिया। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। कभी कभी हम कुछ करते हैं और बाद में जब हमें कुछ पता चलता है तो कहते हैं, मुझे पहले पता होता तो मैं ऐसा नहीं वैसा करता। इसका अर्थ है कि हम में ज्ञान की कमी है। कभी कभी हम किसी बात को अपनी समझ से करते हैं, परंतु हमारी समझ सीमित है, अतः हमारा निर्णय उचित नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि हम में समझ की कमी है। कभी कभी हम में अनुभव की भी कमी होती है और हमारे निर्णय सिद्ध नहीं हो पाते। कहने का अर्थ है कि हम सीमित मनुष्य हैं। अब परमेश्वर की अपरंपार बुद्धि, उसके सिद्ध ज्ञान के बारे में सोचें। वह कभी नहीं पछताता है। उसे कोई बात पता नहीं थी। परमेश्वर अनंत समय को देख सकता है। वह तो आज आदिकाल को भी देख सकता है। यही कारण है कि परमेश्वर हमारे अंधकार के पलों में कहता है कि हम उस पर भरोसा रखें। उसका अनुभव अनंत है। परमेश्वर हमें अज्ञान में देखकर कहता है, मुझ पर भरोसा रख। आप उस पर भरोसा कैसे रखेंगे? जब आप जान लेंगे कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वह सर्वोत्तम बात जानता है, वह सब कुछ देखता है और सब बातों का परिणाम अनंत काल तक देख सकता है। परम हर एक काम को सही करता है। यह परमेश्वर की बुद्धि है जो कष्टों में हमारी चट्टान है। वह सदैव सर्वोत्तम काम करता है, सर्वोत्तम वरदान देता है। यह ठोस सत्य है। टोजर कहते हैं, परमेश्वर की भलाई हमारा सर्वोत्तम कल्याण है, जिसे परमेश्वर की बुद्धि योजनाबद्ध करती है और परमेश्वर का सामर्थ्य पूरा करता है। तो हमें क्या कमी है? परमेश्वर में भरोसा रखकर हम उसका सम्मान करते हैं, चाहे हमारी समझ में कुछ न आए। चौथा तथ्य, हमारी निराशा की गहराई में परमेश्वर हमारी आशा है। अय्यूब ने पुकार कर कहा, अय्यूब 19:23-27, भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती और लोहे की टांकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन करूंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए, मुझे आशा है, मेरा मुक्तिदाता जीवित है और मैं उसे अनंतता शरीर में रहते हुए ही देखूंगा। सदा स्मरण रखें, परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले चंगे किए जाएंगे और हम उसके चेहरे को देखेंगे। कष्टों में परमेश्वर का प्राचुर्य। अय्यूब 32:37, कष्टों में परमेश्वर का उद्देश्य, महत्वपूर्ण आधार। कष्टों में परमेश्वर का उद्देश्य। अय्यूब के 3 मित्र तो उससे विवाद कर ही रहे थे कि यह चौथा व्यक्ति कहीं से आ जाता है, एलीहू। अब हम क्यों का उत्तर पाते हैं। एलीहू 3 महत्वपूर्ण आधार बताता है। पहला, परमेश्वर का एक उद्देश्य है। परमेश्वर निरुद्देश कुछ नहीं करता है। अय्यूब 36:5-7, देख परमेश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता। वह समझने की शक्ति में समर्थ है। वह दुष्टों को जिलाए नहीं रखता और दीनों को उनका हक देता है। वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता, वरन उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बैठाता है और वे ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। संयोग वंश कुछ गलत नहीं होता है, परमेश्वर का उद्देश्य है। परमेश्वर का उद्देश्य कभी भिन्न भी होता है। अय्यूब 37:11-13, यहीं तक आ और आगे न बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाएं। क्या तूने जीवन भर में कभी भोर को आज्ञा दी और पौ को उसका स्थान जताया है, ताकि वह पृथ्वी की छोर को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं? परमेश्वर 3 कारणों से वर्षा देता है, सुधार के लिए, अपने प्रेम के कारण, भूमि के लिए। अतः उसके उद्देश्य अलग अलग होते हैं, परंतु होते भलाई के हैं। वह हर एक काम में धर्मी और खरा है। अय्यूब 37:23-24, सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी है और जिसका भेद हम पा नहीं सकते, वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता। इसी कारण सज्जन उसका भय मानते और जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है उन पर वह दृष्टि नहीं करता। परमेश्वर द्वारा कष्ट के विभिन्न उद्देश्य। अब इन आधारों के साथ इन अध्यायों में उभरने वाले कष्टों के निमित्त परमेश्वर के उद्देश्य देखें। परमेश्वर कष्टों द्वारा हमारे विश्वास को परिष्कृत करता है। अय्यूब 33:14-18, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या परन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। वह उसके प्राण को गढ़े से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। और अय्यूब 33:29-30 में, देख ऐसे ऐसे सब काम परमेश्वर मनुष्य के साथ 2 बार क्या वरन 3 बार भी करता है, जिससे उसको कब्र से बचाए और वह जीवन लोक के उजियाले का प्रकाश पाए। परमेश्वर कष्टों द्वारा हमें घमंड से दूर करता है और गढ़े से उभारता है। वह हमें संवारता है, हमारा पुनरुद्धार करता है और हमारी भलाई करता है। यदि हमारी हड्डी टूट जाए तो डॉक्टर उसे बैठाने में हमें कष्ट देता है, परंतु वह कष्ट हमारी भलाई के लिए होता है। परमेश्वर हमारे विश्वास को परिष्कृत करने हेतु हमें कष्ट देता है और अपनी महिमा प्रकट करता है। अय्यूब सोच रहा था कि परमेश्वर चुप है, परंतु एलीहू कहता है, अय्यूब 33:12-13, देख मैं तुझे उत्तर देता हूँ, इस बात में तू सच्चा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से बड़ा है, तो उससे क्यों झगड़ता है कि वह अपनी किसी बात का लेखा नहीं देता? दूसरे शब्दों में परमेश्वर बात कर रहा है, देख वह कैसे अपने आप को प्रकट कर रहा है। परमेश्वर सृष्टि में अपने आप को प्रकट करता है, अय्यूब 36:22-33। देख परमेश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है, उसके समान शिक्षक कौन है? किसने उसके चलने का मार्ग ठहराया है और कौन उसे कह सकता है तूने अनुचित काम किया है? उसके कामों की महिमा और प्रशंसा करना स्मरण रख, जिसकी प्रशंसा का गीत मनुष्य गाते चले आए हैं। सब मनुष्य उसको ध्यान से देखते आए हैं और मनुष्य उसे दूर दूर से देखता है। देख परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है और उसके वर्ष की गिनती अनंत है, क्योंकि वह तो जल की बूंदें ऊपर को खींच लेता है और वे कोहरे से मेह होकर टपकती हैं। वे ऊंचे ऊंचे बादल उंडेलते हैं और मनुष्यों के ऊपर बहुतायत से बरसाते हैं। फिर क्या कोई बादलों का फैलना और उसके मंडल में का गरजना समझ सकता है? देख वह अपने उजियाले को चारों ओर फैलाता है और समुद्र की थाह को ढांपता है, क्योंकि वह देश देश के लोगों का न्याय इन्हीं से करता है और भोजन वस्तुएं बहुतायत से देता है। वह बिजली को अपने हाथ में लेकर उसे आज्ञा देता है कि निशाने पर गिरे। इसकी कड़क उसी का समाचार देती है कि पशु भी प्रकट करते हैं कि अंधड़ चढ़ा आता है। परमेश्वर अपने वचन से स्वयं को प्रकट करता है, अय्यूब 33:15-17। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनके शिक्षा पर मुहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। क्या आपको भी ऐसा लगा कि आपके कष्टों में परमेश्वर चुप था? नहीं, वह सृष्टि के माध्यम से बात करता है, वह वचन के माध्यम से बात करता है और परमेश्वर हमारे कष्टों में प्रकट होता है, अय्यूब 33:19-26। मनुष्य की ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा तड़पता है और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है, यहाँ तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है। उसका मांस ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता और उसकी हड्डियाँ जो पहले दिखाई नहीं देती थी निकल आती हैं। तब वह कब्र के निकट पहुँचता है और उसका जीवन नष्ट करने वालों के वश में हो जाता है। यदि उसके लिए कोई बिचवई स्वर्गदूत मिले जो हजार में से एक ही हो, जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है, उसे गढ़े में जाने से बचा ले, मुझे छुड़ौती मिली है, उस मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाए, उसकी जवानी के दिन फिर लौट आए। तब मनुष्य परमेश्वर से विनती करेगा और वह उससे प्रसन्न होगा, वह आनंद से परमेश्वर का दर्शन करेगा और ईश्वर मनुष्य को ज्यों का त्यों धर्मी कर देगा। सी.एस. लुईस कहते हैं, परमेश्वर आनंद में हमारे कान में फुसफुसाता है और हमारे विवेक से बात करता है, परंतु कष्ट के समय चिल्लाकर कहता है। यह संसार को जगाने के लिए उसका लाउड स्पीकर है। परमेश्वर अपने बारे में क्या प्रकट करता है? अय्यूब ने सीखा कि परमेश्वर स्वयं को प्रकट करता है और वह धर्मी है और वह कहता है, अय्यूब 34:10-12, इसलिए हे समझ वालों मेरी सुनो, यह संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। वह मनुष्य की करनी का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। निसंदेह परमेश्वर दुष्टता नहीं करता और न सर्वशक्तिमान अन्याय करता है। परमेश्वर कृपालु है, अय्यूब 36:15-16। वह दुखियों को उनके दुख से छुड़ाता है और उपद्रव में उनका कान खोलता है, परंतु वह तुझको भी क्लेश के मुंह में से निकालकर ऐसे चौड़े स्थान में जहां सकेती नहीं है पहुंचा देता है और चिकना चिकना भोजन तेरी मेज पर परोसता है। परमेश्वर महान है, अय्यूब 37:22-24। उत्तर दिशा से सुनहली ज्योति आती है और परमेश्वर भययुक्त तेज से विभूषित है। सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी है और जिसका भेद हम पा नहीं सकते, वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़कर अत्याचार नहीं कर सकता। इसी कारण सज्जन उसका भय मानते हैं और जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है उन पर वह दृष्टि नहीं करता। वह धर्मी है, दयावान है, वह महान है। स्पष्ट है कि कष्टों में हमें उसके गुणों का गहन बोध होता है। कष्टों में परमेश्वर के प्रकाशन से संघर्षरत हमें निम्न लिखित सीमाओं से बचना है। पहली, अपने आप को निर्दोष कहने से। हमने देखा है कि अय्यूब के कष्ट किसी पाप के कारण नहीं थे, परंतु इलीहू कहता है कि वह पापी है। अतः हम कष्टों में अपने आप को निर्दोष ना कहें। अय्यूब कहता है 31:35-37, भला होता कि मेरा कोई सुनने वाला होता। सर्वशक्तिमान अभी मेरा न्याय चुकाए, देखो मेरा दस्तखत यही है। भला होता कि जो शिकायतनामा मेरे मुद्दई ने लिखा है वह मेरे पास होता, निश्चय में उसको अपने कंधे पर उठाए फिरता और सुंदर पगड़ी जानकर अपने सिर में बांधे रहता। मैं उसको अपने पग पग का हिसाब देता, मैं उसके निकट प्रधान के समान निडर जाता। और अय्यूब 33:8-13 में वह कहता है, निसंदेह तेरी ऐसी बात मेरे कानों में पड़ी है और मैंने तेरे वचन सुने हैं। मैं तो पवित्र और निरपराध और निष्कलंक हूँ और मुझ में अधर्म नहीं है। देख, वह मुझसे झगड़ने के दांव ढूंढता है और मुझे अपना शत्रु समझता है। वह मेरे दोनों पाँव को काठ में ठोक देता है और मेरी सारी चाल चलन की निगरानी करता है। देख, मैं तुझे उत्तर देता हूँ, इस बात में तू सच्चा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से बड़ा है तो उससे क्यों झगड़ता है? कि वह अपनी किसी बात का लेखा नहीं देता? दूसरी बात, परमेश्वर के न्याय पर विश्वास ना करना। अय्यूब परमेश्वर पर अभियोग चलाना चाहता था कि वह अन्यायी है। एलियो कहता है कि परमेश्वर धर्मी है। जब हम संसार में अन्याय देखते हैं, अपने जीवन में अन्याय देखते हैं, हम उसके गुण पर अविश्वास के साथ धर्मशास्त्र ना पढ़ें। हमें उसकी दया से चूकने से बचना है। हम अनेक बार परमेश्वर की दया के प्रमाणों को अनसुना करते हैं। परमेश्वर हमारे कष्टों में सर्वत्र अपने आप को प्रकट करता है, परंतु हमें उसकी महानता को कम समझने से बचना है। तीसरी बात, परमेश्वर कष्टों द्वारा हमें उस पर निर्भर होना सिखाता है। यह अय्यूब की पुस्तक का मुख्य विषय है। अय्यूब 34:13-15, किसने पृथ्वी को उसके हाथ में सौंप दिया, या किसने सारे जगत का प्रबंध किया? यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। हमारी हर एक सांस परमेश्वर से आती है। अय्यूब 36:17-21, परंतु तूने दुष्टों का सा निर्णय किया है, इसलिए निर्णय और न्याय तुझसे लिपटे रहते हैं। देख, तू क्रोध में भड़क कर ठट्टा मत कर, और न प्रायश्चित को अधिक बड़ा जानकर मार्ग से मुड़। क्या तेरा रोना या तेरा बल तुझे दुख से छुटकारा देगा? उस रात की अभिलाषा ना कर जिसमें देश देश के लोग अपने अपने स्थान से मिटाए जाते हैं। चौकस रहे, अनर्थ काम की ओर मत फिर। तूने तो दुख से अधिक इसी को चुन लिया है। जब हम डॉक्टर के हाथ में हों, तो हमारी स्थिति कैसी भी हो, बचे या ना बचे, हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है, डॉक्टर के नहीं। कष्ट हमें परमेश्वर पर एक एक सांस के लिए निर्भर करना सिखाते हैं। परमेश्वर कष्टों द्वारा हमें मन फिराव और पाप के त्याग का बोध कराता है। अय्यूब 36:17-21, परंतु तूने दुष्टों का सा निर्णय किया है, इसलिए निर्णय और न्याय तुझसे लिपटे रहते हैं। देख, तू क्रोध में भड़क कर ठट्टा मत कर, और न प्रायश्चित को अधिक बड़ा जानकर मार्ग से मुड़। क्या तेरा रोना या तेरा बल तुझे दुख से छुटकारा देगा? उस रात की अभिलाषा ना कर जिसमें देश देश के लोग अपने अपने स्थान से मिटाए जाते हैं। चौकस रहे, अनर्थ काम की ओर मत फिर। तूने तो दुख से अधिक इसी को चुन लिया है। अय्यूब के कष्ट उसके पाप के कारण नहीं थे। रोमियो की पत्री 5 में स्पष्ट है कि कष्ट एक ही आरंभिक पाप के कारण उत्पन्न हुए। यदि कोई कैंसर से पीड़ित होकर पाप से दूर ना हो, तो कष्टों द्वारा परमेश्वर के उद्देश्य से चूक गया है। कष्टों का उद्देश्य है हम पाप से घृणा करें, मन फिराएं और पापों का त्याग करें। परमेश्वर कष्टों द्वारा हमें उसमें स्थित हमारे प्रतिफल की ओर ले चलता है। अय्यूब 42:5, मैंने कानों से तेरा सुसमाचार सुना था, परंतु मेरी आंखें तुझे देखती हैं। यह संपूर्ण पुस्तक अय्यूब को परमेश्वर की महिमा के दर्शन तक लाने के लिए है। हमारे कष्टों में परमेश्वर के उद्देश्य निमित्त महान आशा है। मेरी कक्षा में एक महिला थी जिसका पति शिकार में दुर्घटनावश मारा गया था। वह कहने लगी कि मैं कष्ट को जानती हूँ और परमेश्वर के अनुभव को बताना मूल्यवान समझती हूँ। उसने पाया कि परमेश्वर उसका प्रतिफल है। यह आसान नहीं है और एक ही रात में नहीं होता, परंतु परमेश्वर में आपका प्रतिपल सुरक्षित है। कष्टों में संभावित प्रश्न, मेरे जीवन में किस क्षेत्र का परिष्कार किया जा रहा है? परमेश्वर अपने बारे में क्या प्रकट करना चाहता है? मैं कष्टों के परिणाम स्वरूप परमेश्वर पर कैसे आश्रित रह पाऊंगा? मुझे कौन से पापों का पश्चाताप एवं त्याग करना है? यह मुझे परमेश्वर में अधिक गहन प्रतिफल की ओर कैसे ले चलते हैं? अय्यूब 38:42, कष्टों में परमेश्वर का सामर्थ। यह सब कष्टों में परमेश्वर के सामर्थ की ओर ले चलता है। अय्यूब 42:1-6, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थीं, जिनको मैं जानता भी नहीं था। तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन। मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आँखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूँ। हमने इस तथ्य को देखा है, हम अपने कष्टों में परमेश्वर से जवाब मांगते हैं, जबकि हमें कष्टों में जो आवश्यक है वह है परमेश्वर का प्रकाशन। एक स्त्री जो वर्षों लकवे की मारी रही, उसने कहा, परमेश्वर एक पिता के समान केवल परामर्श नहीं देता, वह तो स्वयं ही को दे देता है। वह एक दुखी विधवा का पति होता है। यशायाह 54:5। वह एक बांझ स्त्री की शांति है। यशायाह 54:1। वह एक अनाथ का पिता है। भजन 10:14। अविवाहित का जीवन साथी है। यशायाह 62:5। रोगी का चंगा करने हारा है। निर्गमन 15:26। निराश और कुंठित जनों का परामर्श दाता है। यशायाह 9:6। परमेश्वर का प्रकटीकरण। परमेश्वर अपने बारे में क्या प्रकट करता है? परमेश्वर प्रकट करता है कि उसका सामर्थ महान है। वह हमारा सृजनहार है। अय्यूब 38:4-11। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई, क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बैठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे, फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार मूंद कर उसको रोक दिया? जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया और उसके लिए सीमा बांधी और यह कहकर बेड़े और किवाड़े लगा दिए, यहीं तक आ और आगे ना बढ़, और तेरी मरने वाली लहरें यहीं थम जाएं। और अय्यूब 38:34-38 में वह कहता है, क्या तू बादलों तक अपनी वाणी पहुंचा सकता है, ताकि बहुत जल बरस कर तुझे छिपा ले? क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है कि वह जाए और तुझसे कहे, मैं उपस्थित हूँ? किसने अंतःकरण में बुद्धि उपजाई और मन में समझने की शक्ति किसने दी है? कौन बुद्धि से बादलों को गिन सकता है और कौन आशा के कुप्पों को उंडेल सकता है? जब धूली जम जाती है और ढेले एक दूसरे से सट जाते हैं, वह हमारा निर्वाह है। अय्यूब 38:39-41। क्या तू सिंहनी के लिए अहेर पकड़ सकता और जवान सिंहों का पेट भर सकता है? जब वे मांद में बैठे हों और आड़ में घात लगाए दबक कर बैठे हों, फिर जब कौए के बच्चे परमेश्वर के दुहाई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है? सिंहों को और पक्षियों को दैनिक भोजन कौन देता है? प्रकृति नहीं, परमेश्वर। परमेश्वर ने शुतुरमुर्ग की चर्चा की, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। 39:13-17। फिर शुतुरमुर्गी अपने पंखों को आनंद से फुलाती है, परंतु क्या ये पंख और पर स्नेह को प्रकट करते हैं? क्योंकि वह तो अपने अंडे भूमि पर छोड़ देती और धूली में उन्हें गर्म करती है, और इसकी सुधि नहीं रखती कि वे पांव से कुचले जाएंगे या कोई वन पशु उनको कुचल डालेगा। वह अपने बच्चों से ऐसी कठोरता करती है कि मानो उसके नहीं है। यद्यपि उसका कष्ट अकारत होता है, तो भी वह निश्चिंत रहती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बुद्धि रहित बनाया और उसे समझने की शक्ति नहीं दी। अय्यूब, शुतुरमुर्ग मूर्ख क्यों है? मैंने उसे ऐसा बनाया। अय्यूब 39:25-27 में परमेश्वर कहता है, जब जब नरसिंगा बचता तब तब वह हिन हिन करता है, और लड़ाई और अफसरों की ललकार और जय जयकार को दूर से सूंघ लेता है। क्या तेरे समझाने से बाज उड़ता है और दक्षिण की ओर उड़ने को अपने पंख फैलाता है? क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है? वह हमारा सृजनहार है, हमारा निर्वाह है, हमारा उद्धार करता है। अय्यूब 40:8-14। क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा? क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मनसा से मुझको दोषी ठहराएगा? क्या तेरा बाहुबल परमेश्वर के तुल्य है? क्या तू उसकी सी बोली से गरज सकता है? अब अपने को महिमा और प्रताप से संवार और ऐश्वर्य और तेज के वस्त्र पहन ले। अपने अति क्रोध की बाढ़ को बहा दे और एक एक घमंडी को देखते ही उसे नीचा कर। हर एक घमंडी को देखकर झुका दे और दुष्ट लोगों को जहां खड़े हो वहां से गिरा दे। उनको एक संग मिट्टी में मिला दे और उस गुप्त स्थान में उनके मुंह बांध दे। तब मैं भी तेरे विषय में मान लूंगा कि तेरा ही दाहिना हाथ तेरा उद्धार कर सकता है। अंत में परमेश्वर हमारा मित्र है। वाचा का परमेश्वर हमारा मित्र है। अय्यूब 42:7-9। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसे ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल 7 मेढ़े छाँट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूँगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता की योग्य बर्ताव करूँगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। यह सुन तेमानी एलिपज, शूही बिलदद और नमाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। परमेश्वर का सामर्थ महान है, उसका उद्देश्य निश्चित है। अंत में अय्यूब कहता है, अय्यूब 42:2, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कुछ रुक नहीं सकती। अय्यूब की पुस्तक में एक एक शिक्षा पर ध्यान दें। शैतान परमेश्वर के लोगों पर वार करता है तो केवल परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। शैतान परमेश्वर की अनुमति से ही काम करता है, परंतु केवल परमेश्वर के उद्देश्य की पूर्ति में सहायता करता है। परमेश्वर का उद्देश्य निश्चित है, उसका ज्ञान सिद्ध है। परमेश्वर सब कुछ व्यापक रूप से जानता है। अय्यूब 42:3, तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थीं, जिनको मैं जानता भी ना था। अय्यूब तो मेरे कार्यों के विषय में कुछ नहीं जानता है, मैं सृजनहार और संभालने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, अतः मनुष्य ना तो परमेश्वर को सिखाए और ना ही उसके कामों को दोष दे। तू सोचता है कि संसार विचित्र और रहस्यमय है, परंतु सच तो यह है कि यह तेरी कल्पना से अधिक रहस्यमय है, परंतु मैं सब भेदों को जानता हूँ। परमेश्वर सब कुछ व्यापक रूप से जानता है और हमें भी पूर्ण रूप से जानता है। वह हमें थामे रहता है, उसका ज्ञान सिद्ध है और उसकी दया वैतिक है। अब तक जो अय्यूब परमेश्वर के प्रति प्रश्न कर रहा था, परंतु अब वह व्यक्तिगत रूप से कहता है। अय्यूब 42:5-6, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आँखें तुझे देखती हैं। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूलि और राख में पछताप करता हूँ। अय्यूब परमेश्वर के समक्ष निरुत्तर है और अपने पापों का अंगीकार करता है। परमेश्वर की दया को व्यक्तिगत रूप में देखने पर हम श्रद्धा से भर कर स्तुति करते हैं। हम अपने परमेश्वर में आनंदित होते हैं, उसकी प्रभुता में, उसके प्राचुर्य में, उसके उद्देश्य और सामर्थ्य में आनंदित होते हैं।